ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 18 अंत्य लीला, और रेस्क्यूइंग द लॉर्ड फ्रॉम द सी। सो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 18 अंत्य लीला चैतन्य चरितमृता, रेस्क्यूइंग द लॉर्ड फ्रॉम द सी। भगवान चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों ने समुद्र से बचाया, ये चैप्टर का नाम है। सो ये ऑलमोस्ट लास्ट, सेकेंड लास्ट चैप्टर है चैतन्य चरितमृता का, और इस चैप्टर में कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं अपने भक्तों को प्रेम के सागर में डुबा देते हैं, एज अ फर्स्ट श्लोक, वो खुद सागर में डूब गए। ऑफ कोर्स मरे नहीं, वो भगवान नहीं मरते, बट ही जंप्ड इनटू द सी। सो कृष्णदास गोस्वामी लिख रहे कि चैतन्य महाप्रभु अपने अंतिम दिनों में रात और दिन प्रेम के सागर में डूबे रहते थे, भगवान के बारे में चिंतन कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, और मॉर्निंग में और सुबह सुबह, और फिर एक दिन रात को चैतन्य महाप्रभु समुद्र में जाके कूद गए। जगन्नाथपुरी में समुद्र नहीं है, सी, उसमें कूद गए, ये इस भ्रम में कि वो यमुना जी हैं। क्योंकि चैतन्य चरितमृता में आता है कि शैल देखी मानाए गोवर्धन पर्वत, जब महाप्रभु पर्वत को देखते थे तो उनको लगता था गोवर्धन है। ऐसे हम अभी झारखंड गए तो अब कितने सारे पर्वत थे, अगर महाप्रभु वहां पे होते तो सबको गोवर्धन समझ लेते, हमने तो नहीं, हमें तो पर्वत ही लग रहे हैं। बट चैतन्य प्रभु ऐसे, चैतन्य प्रभु जहाँ शैल देखी मानाए गोवर्धन, उसके बाद क्या था, मानाए कैसे कालिंदी, मानाए कालिंदी, और किसी नदी को देखते थे तो उनको लगता था वो यमुना जी। सो पॉइंट ये था कि वो हमेशा हमेशा कृष्णा कॉन्शियस थे, इसलिए उनको हर जगह भगवान की और वृंदावन की अनुभूति हो रही है। ऑफ कोर्स हम इसको आर्टिफिशियली नहीं कर सकते, मगर हम इस प्लेटफॉर्म को वर्शिप जरूर कर सकते हैं। इसलिए भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर कहते थे कि ये महाप्रभु के जो भाव हैं वो अनुकरणीय नहीं है, पूजनीय है, हम इसकी पूजा करते हैं। ऑफकोर्स हमारे साथ तो नहीं हो सकता, नहीं कभी कि हम पर्वत देखें हमें गोवर्धन दिखाई दे रहा है, बल्कि हमें गोवर्धन पर्वत दिखाई देता है, हमारे साथ तो उल्टा ही है, नदी यमुना दिखाई दे रही है, हमें यमुना जी नॉर्मल नदी दिखाई दे रही है, हमें अभी कुछ नहीं दिखाई। आप लोग वृंदावन गए थे ना अभी आप लोग सब, सो हमें वृंदावन अभी नॉर्मल नॉर्मल दिखाई दे रहा है, नॉर्मल यूपी का एक पार्ट, बट महाप्रभु को हर जगह वृंदावन दिखाई दे रहा है, दैट्स हिज कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद कह रहे हैं जब कृष्ण कॉन्शियस हो जाओगे तो हर जगह भगवान की अनुभूति होने लगेगी नेचुरली। सो इस चैप्टर में चैतन्य महाप्रभु के, चैतन्य प्रभु किस तरह प्रेम के सागर में और असली सागर में डूबे, दोनों को डिस्क्राइब कर रहे हैं कृष्णदास गोस्वामी। सो ये चैप्टर एक्चुअली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट कृष्णदास गोस्वामी दिखा रहे हैं कि किस तरह महाप्रभु प्रेम के सागर में डूब रहे हैं, क्या है कल्लोल मग्नौ मुहु, उसमें भी आता है षड गोस्वामी अष्टक में कि गोस्वामी, षड गोस्वामी प्रेम की तरंगों में दिन रात डूबे हुए थे, ऐसे महाप्रभु थे। और फिर दूसरे पार्ट में चैतन्य महाप्रभु असली में ही सागर में कूद गए और बहते बहते कहाँ पहुंच गए, कोणार्क, जगन्नाथपुरी से कोणार्क आई थिंक 28-29 किलोमीटर ऐसे ही कुछ है, बहते बहते वहां पहुंच गए, मतलब सागर में डूबे रहे एटलीस्ट 2-3 घंटा, एंड ही डिडंट डाई, ही इज गॉड। सो यहां पे कृष्ण गोस्वामी लिख रहे हैं, ए मते डिस्क्राइब कर रहे हैं, पहला पार्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं जिसमें महाप्रभु प्रेम के सागर में डूबे हैं। क्यों डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि जिससे हम लोग भी ये पढ़ के हमारे में भी इच्छा है कि हम भी किसी दिन इस महाप्रभु के जो प्रेम गिफ्ट करने आए हैं उसकी एक बूंद हमें भी मिल जाए। एटलीस्ट डिजायर तो है, इच्छा तो है लेने की। इच्छा ही नहीं होगी ये चीज लेने की, गिफ्ट लेने की, तो फिर कभी मिलेगा ही नहीं हमें। सो ऐ मते महाप्रभु नीला चले वैसे, रात्रि देने कृष्ण विच्छेदेर और नवे भाषे। सो इस तरह चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में रहते थे पुरी में, और रात दिन भगवान कृष्ण के विच्छेद में वो भगवान के लिए रोते रहते थे। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये हमारे लाइफ का गोल है। बस प्रभुपाद लिख रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में कि हमारी लाइफ का गोल है भगवान के लिए रोना, ये गोल है। सो भगवान के भक्त क्या हैं? कभी कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, नहीं कभी बेहोश हो जाते हैं। भागवतम तो यही कह रही है, नहीं वो क्या श्लोक है वो एवं व्रता स्वप्रिय नाम अकीर्तया जातानुरागा द्रुत उच्च चित्तई हसती रौती गायती उन्मादवद नित्यति। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान के भक्त कैसे हैं। भगवान के भक्त जब भगवान का नाम लेते हैं तो उनका हृदय पिघल जाता है, उनका उनके हृदय में जितनी गंदगी है, वैसे तो भगवान के महान भक्तों में गंदगी नहीं होती, मगर जो भी अनर्थ है वो पिघल के बह जाते हैं और उनका हृदय भगवान की भक्ति में पिघल जाता है द्रुत चित्त ही। और क्योंकि हृदय पिघल जाता है तो उनके हृदय में भगवान के नाम रूप गुण लीला प्रकट होते हैं, और फिर कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी बेहोश होते हैं, कभी पागलों की तरह नाचते हैं जैसे प्रहलाद महाराज। दैट्स ऑल। सो ऐसे ही महाप्रभु ये प्रेम हमें दिखा रहे हैं। महाप्रभु हमें भागवत, श्रीमद् भागवत और गीता जी के दिखा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत गीता के। अब क्वेश्चन ये कि यहां तक पहुंचे कैसे? हमारे साथ कभी होगा ऐसा या नहीं? क्या हम कभी भगवान का नाम लेते हुए हम भी बेहोश होंगे? कभी कोई बेहोश हुआ है नाम लेते हुए? कोई हुआ है? कोई हुआ है? आप क्या अल्फा बनती? कोई नहीं हुआ, नहीं, इट्स डिफिकल्ट। नहीं, कुछ सहजे लोग बेहोश हो जाते हैं, बट दैट्स ऑल इमिटेशन। मगर असली में हम कभी बेहोश नहीं हुए भगवान का नाम लेते हुए। कभी एक आंसू भी नहीं आया भगवान का नाम लेते हुए आंखों में। उन्माद व नित्यति, हरिदास ठाकुर जब भगवान का नाम लेते थे तो हरिदास ठाकुर कौन, चैतन्य महाप्रभु के डिवोटी थे, एक वक्रेश्वर पंडित, वो जब कीर्तन में नाचते थे तो नाचते रहते थे, बस 3 दिन तक नाचते रहते थे, 3 दिन 3 रात कंटिन्यूसली, पूरे दिन नाच रहे हैं, पूरी रात नाच रहे हैं, फिर अगले दिन पूरी रात, फिर अगले दिन पूरी रात, फिर भी उनको जाके रोकना पड़ता था कि भैया रुक जाओ। इसको कहते हैं एक्सटेसी। अफकोर्स जो लोग आर्टिफिशियली नाचते हैं, नहीं कई लोग तो ऐसे ढोंगी लोग होते हैं, वो कितना नाच लेंगे, 1 घंटा नाचेंगे, 2 घंटा नाचेंगे, फिर थक के सो जाएंगे, ऐसे ही होता है ना। बट रियल डिवोटीज आप उनको इमिटेट नहीं कर सकते। महाप्रभु एक डिवोटी थे, वो 1 महीना नाचे थे बिना खाए पे, नाचते रहे, लोगों ने सोचा पागल हो गए, बट इसको प्रेम कहता है। कृष्णाकर स्वामी लिख रहे हैं चैप्टर में कि जब कि प्रेम नाचे जीव नाचे, कैसे है वो श्लोक, एक्चुअली जगदानंद पंडित लिख रहे हैं, कृष्ण नाचे जीव नाचे नाचे प्रेम धन। कि जब भक्त को प्रेम मिल जाता है तो कृष्ण नाचते हैं उसके हृदय में, और जीव नाचता है, और प्रेम धन नाचते हैं, तीनों नाचते हैं। सो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेक। तो क्वेश्चन यहां तक पहुंचे कैसे? क्वेश्चन है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं क्या करें, इसका कैसे पहुंचे? सो यहां तक पहुंचने का एक ही तरीका है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु में क्या है, वो सर्व सिद्धि होए, नहीं हरे कृष्ण नाम में भी है कुछ। महाप्रभु कह रहे हैं कि हरे कृष्ण नाम लेते लेते कृष्ण मंत्र ऐ तो स्वभाव। एक्चुअली उनके गुरु ने पूछा महाप्रभु से, कि भैया तुम इतने पागल कैसे हो गए हो नाम लेते लेते, मतलब ये क्या हो गया तुम्हें, भक्ति कर रहे हो तुम पागल हो गए हो, कभी नाच रहे हो कभी रो रहे हो कभी हो क्या रहा है। तो महाप्रभु ने कृष्ण मंत्र कृष्ण कैसे कृष्ण कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, कि भगवान के नाम का स्वभाव ही है कि जो भगवान के नाम को जपता है वो पागल हो जाता है। दैट्स द आइडिया। बट ऑफकोर्स कैसे हम जप रहे हैं, हमारा तो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी हार्ट इतना प्योर प्योर नहीं है। इट्स नॉट, इसलिए भगवान का नाम हमारे आत्मा को छू नहीं पा रहा। हम ले तो रहे हरे कृष्ण 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 हरे, हमारे कान पे जाके रिबाउंड हो जाता है ये, हमारे हम जा हरे कृष्ण बोलते कान में जाता है, हार्ट में आता है और फिर रिबाउंड होके बाहर चला जाता है। वो टेबल टेनिस नहीं होती, पिंग वहाँ पे डाला वो पिंग वो वापस आ गया, खेले बैडमिंटन वो भाई यहाँ पे मारोगे शटल कॉक वहाँ पे वो दूसरा वहाँ पे वापस आ जाएगा आपके पास। तो ऐसे ही होता है हमारे साथ, हरे कृष्ण अंदर जाता है फिर हृदय में जाता है, और हृदय में कौन बैठा है? माया। माया उसको टिंग वापस भेज देती है, फिर हम डालते हैं फिर वापस भेज देती है, बस यही चलता रहता है। चट्टा का वॉर बिटवीन माया एंड अस। सो रघुनाथ स्वामी कह रहे हैं कि माया पिशाची, जब माया रूपी पिशाची हृदय से चली जाएगी तब भगवान का नाम हमारी आत्मा को छू पाएगा। अभी माया रूपी पिशाची हमारे हृदय में, वो क्या श्लोक है, पिशाची हृदय वर्तते, भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते। जब तक भुक्ति भोग और मुक्ति की पिशाची हृदय में पड़ी रहेगी, ति मुक्ति स्प्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते, जब तक भुक्ति हमारे हृदय में एक पिशाची, पिशाची समझते हो ना सब लोग, भूतनी ज्यादा डेंजरस होती है, भूत ज्यादा डेंजरस होता है। रियल भूतनी बहुत डेंजरस होती है, भूत से ज्यादा डर नहीं लगता। इसलिए हमें भूतनी कहा है, हमें भूतनी कहा। इट्स अ डिफरेंट टाइप थिंग। अब हॉरर मूवीज देख लो आप, आपको भूतनी से बहुत डर लगेगा। मैंने बचपन में देखी थी वो मूवी, कौन सी थी, एग्जॉर्सिस्ट। देखिए एग्जॉर्सिस्ट बचपन में, एंड देयर वर एग्जॉर्सिस्ट, एक्चुअली बहुत डरावनी मूवी थी एग्जॉर्सिस्ट। अगर आप देखोगे ना, सबसे डरावनी मूवी थी, मतलब उसका डायरेक्टर खुद ही मर गया था वो मूवी देखकर इन द हॉल, क्योंकि वो पहली मूवी थी जिसमें भूतनियां थी, भूतनी थे, एंड दैट्स वेरी डेंजरस। आवाज भी तो भूत, आवाज भी तो भूतनियों की डेंजर होती है, भूतों की आवाज डेंजरस नहीं होती। सो इसलिए यहाँ पे भूतनी का एग्जांपल दे रहे हैं, जब तक हृदय में भूतनी रहेगी तब तक आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भूतनी से क्या लगेगा? भय लगेगा। भय, जहां भय है वहां पे भगवान नहीं है, भौतिक संसार का भय। क्योंकि भागवत का क्या श्लोक है, जहां पे भय है वहां पे भगवान नहीं है, क्या कौन सा श्लोक है किसी को पता है? आप लोग भागवत वाले आ गए लोग सब। वो भी है भागवत वाले, ये फेमस वर्ड्स है, भयम द्वितीय अभिनिवेशता स्यात् ईशाद एपतस्य विपर्ययो स्मृति, भागवत में लिखा है। जहां भय है वहां पे द्वैत है, द्वैत मतलब वहां पे भगवान और जीव के बीच में सेपरेशन है। सो वहां पे भगवान नहीं रहते जहां पे हृदय में भय रहता है। सो इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते, जब तक हृदय में भूतनी रहेगी। कि कौन सी भूतनी? दो तरह की भूतनी, एक भोग की एक मोक्ष की। सो जब तक हम भोग चाहते रहेंगे, इंजॉय करना चाहते रहेंगे संसार को, तब तक भगवान का एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा। क्योंकि इस संसार के भोग में भय, भोग ना मिलने का भय, भोग छूटने का भय, यानी डर लगा रहता है इस संसार में। एंजॉयमेंट में हर इंसान को डर लगा रहता है, नहीं डर लगा रहता है, नहीं रहता है। हर हस्बैंड को डर लगा रहता है, भाग जाएगी मेरी वाइफ एक दिन, होता है नहीं होता है, को लड़ाई हो गई भाग जाएगी, कैसे होगा क्या होगा। आजकल तो होता ही है, नहीं आजकल तो मॉडर्न कपल्स को तो बहुत डर रहता है, आराम से रहो, क्या होगा, कैसे होगा, डाइवोर्स देगी, कैसे होगा, पूरा फियर है मैरिज में, पूरा फियर है. इट्स नॉट लव, क्योंकि फियर है. सो भोग, जितना भोग होगा उतना भय होगा. पहले नहीं था ऐसा, जितने भोगी बनते जा रहे हैं ना लोग, उतने डर लगता रहा, ज्यादा लगता है. और मोक्ष में भी भय है. मोक्ष में क्या भय है, मोक्ष की इच्छा में क्या भय है? बल्कि ज्ञानी तो कहते हैं आप मोक्ष के पीछे जाओ, सारा भय खत्म हो जाएगा. नहीं, ज्ञानी का तो प्रपोजल ये है, मोक्ष मिल जाएगा, संसार का भय नष्ट हो जाएगा. मगर महाप्रभु ने कहा नहीं, मोक्ष की इच्छा में भी भय. किस चीज का भय? कौन सा श्लोक है भागवत का? ये अरविंदाक्ष अभिमुक्त मान है ना. उसके बाद त्वयस्त भाव अविशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृच्छेन परम पदम तथा पतन्ति अधो अनादृत युष्मदनंग्रह. ये श्लोक तो याद होने चाहिए. ये श्लोक आप भूल नहीं सकते अब, क्यों? आप तो भागवत के स्टूडेंट्स हो सब, आपके आप लोगों को याद होना चाहिए. दैट्स बैड, और एक्सपेक्टेड नहीं आप लोगों से. सो एक्चुअली ब्रह्मा जी कह रहे हैं, 11th कैंटो में भी आता है. एक्चुअली दो बार, ऑलमोस्ट दो बार रिपीट हुआ है. सो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो मुक्ति कामी उनको भी भय, क्योंकि उनको डर लगा रहता है कि मोक्ष के सर से दोबारा वापस गिर जाएंगे. बड़ी बहुत तपस्या करके मुक्ति तक पहुंचते हैं और इनको डर लगा रहता है कब हम वहां पर वहां से गिर जाएं. सुखदेव गोस्वामी इस प्लेटफॉर्म पे थे, पता है? सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे बट फिर भी परफेक्ट नहीं थे. इसलिए जब व्यासादेव ने भागवत का श्लोक पढ़ा तो सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हो गए. पता है ना, भागवत में तो आता है, मगर उससे पहले एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे. क्यों? क्योंकि उनको किसी चीज का, संसारी चीजों का भय नहीं था. ये एक्चुअली स्टोरी भी आती है पुराण में. सुखदेव गोस्वामी को एक्चुअली व्यासादेव ने बीच में, जब छोटे थे, आई डोंट नो कब था, बट पिछले कल्प में होगा, बट उनको जनक महाराज के यहाँ भेजा. जनक महाराज पता है ना, जनक ऑफकोर्स सीता के फादर नहीं, समदर जनक, जनक वन, जनक टू, जनक थ्री ऐसे भी थे. सो जनक महाराज, ये जनक, जनक संप्रदाय में जनक किंग्स, जितने भी जनक किंग्स हुए सब मुक्त थे. सो जनक महाराज के बच्चे सुखदेव गोस्वामी को, तो जनक महाराज के पास भेजा. तो छोटे बच्चे थे सुखदेव गोस्वामी, तो व्यासादेव ने कहा जाके कुछ सीख के आ जाओ, बहुत बड़े चढ़े हैं वो, यू लर्न. तो सुखदेव गोस्वामी छोटे बच्चे थे गए, तो जनक महाराज आपको ऋषि के पुत्र है, तो जनक महाराज ने अपने सारे बोल दिया, किंग जो है ना, सारे सैनिकों को सबको बोल दिया कि जब वो किंग, जब वो आए राज्य में, तो इनके रिस्पेक्ट मत करना. कोई फूल वाला नहीं चढ़ाएगा, कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई बात भी नहीं करेगा. सो सुखदेव गोस्वामी आए और वहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, कुछ नहीं, आराम से बैठ गए कोने में. तीन दिन तक बैठे रहे, किसी ने कुछ भी नहीं पूछा. फिर तीन दिन बाद जनक महाराज आए खुद और वॉज हैप्पी, नहीं, और उन्होंने उनको फूलमाला पहनाई, उनको महल ले गए, वो खिलाया पिलाया, अच्छे डांस वैंस दिखाया, तब भी उनको कुछ नहीं हो रहा. वो आराम से बैठे हुए थे, नॉट लीस्ट इंटरेस्टेड इन दैट. तो ये तो आपने सुना होगा. फिर जनक महाराज ने कहा कि सुखदेव तुम ये मिल्क लो ग्लास में और पूरे राज्य का चक्कर लगा के आओ, मगर एक भी बूंद गिरने नीचे ना तुम्हें हम तुम्हारा गला काट देंगे. तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो वो दूध लेके गए और जनक महाराज ने बीच में बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं रख दी, धन रख दिया, डिस्ट्रैक्शंस कर, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस कर दी, नहीं हो सकता है एडवर्टाइजमेंट हो, बिल बोर्ड्स हो, सब कुछ सबको लगा दिया, जितना पॉसिबल डिस्ट्रैक्शन थी. अब वो आराम से वो सात चक्कर लगा के वापस आ गए, एक भी बूंद नहीं गिरी. तो जनक महाराज ने सुखदेव से कहा, सुखदेव तुम मेरे पास सीखने आए थे, मगर मुझे लगता है मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा, क्योंकि तुम पहले ही भ्रम ज्ञानी हो, तुम पहले ही मान अपमान से ऊपर उठे हो, इस संसार के आकर्षणों से ऊपर उठे हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, तुम वापस चले जाओ. बट ये 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 जो सुखदेव गोस्वामी थे मुक्त जीव, ये भी भक्ति की तरफ आकर्षित हो गए. इनको भी समझ आ गया कि बिना भक्ति के मैं इस तरह से दोबारा वापस एक्चुअली गिर सकता हूं। परमानेंट नहीं है ये प्लेटफॉर्म, क्योंकि जब तक भगवान की शरण नहीं लेंगे तब तक आप वापस गिर सकते हो। इनफैक्ट प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हम भी कभी ब्रह्मा थे, हम सब यहाँ पे बैठे हुए सब लोग यू कैन इमेजिन अनुराग प्रभु ब्रह्मा थे, मतलब यू कैन इमेजिन, सपने भी नहीं सोच सकते हम बट थे। मतलब हम, मैं भी ब्रह्मा था, अनंत अनंत ब्रह्मा, ओ भाई रियूष प्रभु ब्रह्मा थे। रियूष प्रभु क्या ओए होए, तनी कैसे सृष्टि होगी। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब मैं, हमें हंसी आ रही है इमेजिन, मैं इसलिए बता रहा हूँ, हमें हंसी आ रही है इमेजिन करके कि हम सब ब्रह्मा थे और अभी हम क्या हो गए हैं। एब्सोल्यूट नॉनसेंस नहीं, मतलब एक गिरे हुए इंसान से भी गिरे हुए हो गए। माइंड लगी नहीं रहा भगवान में, इतना कुछ इजी करने के बाद भी हम ऐसे हो गए। सो कोई भी गिर सकता है नहीं, इसलिए मुक्ति, मुक्ति की इच्छा तो छोड़ो, मुक्ति के स्तर पे आके भी भय डर गिरने का, तो सुखदेव गोस्वामी को था, इसलिए उन्होंने इमीडिएटली डिवोशन ले ली। उनको समझ आ गया अभी मुकुंद की शरण नहीं लेंगे तो फिर मुक्ति का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाओं में ये भगवान के प्रेम की उच्च अवस्था दिखा रहे हैं कि जब तक तुम यहाँ नहीं पहुँचोगे तब तक हृदय में पिशाची रहेगी, और जब तक पिशाची रहेगी भोग की और मोक्ष की, तब तक भक्ति का क्या है, भक्ति मुक्ति श्रियावत पिशाची हृदय वर्तते भक्ति सुखस्य, क्या उसका याद है, तब तक भक्ति का सुख अनुभव नहीं हो सकता। एटलीस्ट जो महाप्रभु सुख अनुभव कर रहे हैं वो नहीं हो सकता। शरत काले रात्रि सब चंद्रे का उज्ज्वल, प्रभु निज गण लैया बेड़ान रात्रि सकल। चैतन्य महाप्रभु पूरी पूरी रात जगन्नाथपुरी में, कभी इस गार्डन में जा रहे हैं, कभी उस गार्डन में जा रहे हैं, कभी उस गार्डन में जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं गार्डन में, कृष्ण भगवान को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको विरह हो रहा है, सारे डिवोटीज उनके साथ थे, और महाप्रभु कह रहे थे कि कृष्ण भगवान की गुणगान करो, पूरी पूरी रात सुन रहे थे और तब भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे। चैतन्य प्रभु पूरी पूरी रात भगवान गान लेते थे, और ऑफकोर्स उनके जो एसोसिएट्स थे वो सब इतने हाईफाई नहीं थे महाप्रभु की तरह, तो कुछ लोग थक जाते थे, थक के कुछ लोग शिफ्ट्स में आते थे, नहीं तो 3 घंटे कुछ लोग रहे, 3 घंटे सो गए, फिर वो लोग चले गए, 3 घंटे वाले आ गए, मतलब यू नो पूरी रात चौकीदारी चलती रहती थी कि महाप्रभु को नींद ही नहीं आ रही। गोविंद महाप्रभु का सर्वेंट था ना, गोविंद, तो महाप्रभु पूरी पूरी रात कृष्णा कृष्णा बोलते थे, गोविंद पैर दबाते दबाते वहीं सो जाता था। क्या करोगे आप महाप्रभु के स्पीड से चल ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, इज आर अ डिफरेंट स्पीड, वो डिफरेंट स्पीड पे है, मगर चैतन्य महाप्रभु प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम लोग भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ऑफकोर्स इतनी इंटेंसिटी में नहीं, मगर पहुँच सकते हैं अगर हम हरे कृष्णा महामंत्र यही तो स्वभाव, ये चैतन्य महाप्रभु का प्रॉमिस है। इस मंत्र का स्वभाव ये है कि अगर हम इस मंत्र को निरअपराध होकर लेते रहें, निर्मल हृदय से भक्तों के साथ, तो एक दिन यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अगर हम बीच में कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, कुछ गड़बड़ ना कर रहे तो पहुँच जाएंगे, गड़बड़ करोगे तो नहीं पहुँचेंगे। गड़बड़ मतलब क्या है, कोई अपराध ना करें हम वैष्णव के प्रति, या गुरु अवज्ञा ना करें, दैट्स इम्पॉर्टेंट, तो वहाँ तक डेफिनेटली हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। महाप्रभु का प्रॉमिस है, महाप्रभु गिफ्ट देने आए हैं, ये प्रेम जो ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला है वो हम लोगों को देने आए हैं, जो प्रेम सत्ययुग में करोड़ों वर्षों करोड़ों युगों तक तपस्या करके मिलता था शायद, और शायद वो फिर भी नहीं मिलता था, वो महाप्रभु हमें एक ही जीवन में देने आए हैं, इतने छोटे से जीवन में नहीं, 60-70 ईयर्स की लाइफ है हमारी, फिर तो मर जाएंगे हम, उससे पहले प्रॉमिस्ड है, मगर महाप्रभु प्रॉमिस कर रहे हैं, हमें भी अपना प्रॉमिस रखना पड़ेगा, इतना है बस, कि अगर हम वैष्णवों की और गुरु की बात एज इट इज फॉलो कर लेंगे तो मिला है, अगर हमारा संकल्प नहीं टूटे, अगर हम अपने हृदय में हम जानते हैं कि हम सिंसियर हैं, शुद्ध हैं, कपटी नहीं है, कपट, हम चीट नहीं कर रहे भगवान को, नहीं तो कृष्णा, कृष्णा तो रेडी है, अभी कृष्णा तो रहते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान हमारे हृदय में बैठ के सब कुछ देख रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कब ये निष्कपट होके मेरी सेवा करेगा। और हम निष्कपट हैं या कपट है वो तो हमें खुद पता ही लग जाएगा, नहीं उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कभी कभी पता नहीं लगता, नहीं कभी कभी लगता है हम सिंसियर हैं और दूसरे डिवोटीज कहते हैं प्लीज लुक इन योर हार्ट, प्रॉब्लम है तुम्हारे में है नहीं। वैसे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको समझ ही नहीं आता। कभी कभी ऐसा भी होता है, नहीं कभी कभी ये मोस्टली ऐसा हो जाता है, डिवोटी समझाते रहते हैं प्लीज अपने झांक के देखो प्रॉब्लम है तुम्हारे अंदर, वो नहीं समझ आता। इसलिए महाप्रभु ने एक और श्लोक बोला है, साधु संग सर सिद्धि होए। एक तो ये श्लोक है कि चैतन्य हरे कृष्ण महामंत्र लेके सर सिद्धि हो जाएगी, और एक वो श्लोक है कि साधु संग लेके सर सिद्धि हो जाएगी। सो क्या करें, महामंत्र ले या साधु संग ले? एक्चुअली दोनों है, क्योंकि महामंत्र लेकर हो सकता है हमें खुद ही पता ना लगे कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, तो साधु दिखाएंगे। अगर हम साधुओं साधु संग दो बार बोला, साधु संग दो बार क्यों बोला, किसी को पता है? साधु संग सर शास्त्र को है, लव मात्र साधु संग सर सिद्धि हुए, दो बार साधु संग बोला है। क्यों? क्योंकि एक बार साधु संग करोगे तो सुनोगे, दूसरी बार साधु संग करोगे तो सुनाओगे तो फिर क्लिक होगा। एक बार साधु संघ से क्लिक नहीं होता, मतलब एक बार साधु संघ करते रहोगे ना, वो क्लिक नहीं होती चीजें, कि कई टाइम बाद क्लिक क्लिक समझते हो, क्लिक कैसे कहेंगे हिंदी में, हाँ वो समझ नहीं आता, वो ना एक हम सुनते रहते हैं एक एक्चुअली क्लिक भी नहीं करता, कन्विंस नहीं, क्लिक ही नहीं करेगा आपको।
श्लोक
आ ही नहीं रहा,
रो रहा था तो ये नहीं होता कौन सा वाला बोल रहा है यहाँ पे
आपको यार समझ
में आया, ऐसे यही होता है बस। हाँ वो जब यार निकलता है ना तो मतलब समझ गया, क्लिक हो गया यार, आप समझ गया, क्लिक नहीं होता, इट्स डिफिकल्ट। सुनते रहते हैं कई सालों 10 साल बाद समझ आता है वो मैं तो अहंकारी हूँ, मगर हम रोज ही सुन रहे हैं, हम अहंकारी 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 अहंकारी, हमें नहीं समझ आ रहा। 10 साल बाद सेवा करते करते जब हृदय शुद्ध होता है तब जब हम सुनते हैं एक क्लास में हम अहंकारी हैं, ओ माय गॉड मैं ही हूँ, ऐसा होता है, नहीं होता है? या हम सुबह शुरू में हरे कृष्ण चैंटिंग करते रहते हैं 6 साल बाद समझ आता है ओ मैं ओम नमो भगवते वासुदेव नहीं कर रहा, मैं हरे कृष्ण कर रहा हूँ, उससे पहले पता नहीं लगता क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आता। इट्स डिफिकल्ट, क्लिक होना बहुत डिफिकल्ट है। हमारे पिछले जन्मों के पाप ढके रहते हैं बुद्धि को, नहीं आप 24 घंटे भी सुनते रहो ना तब भी हो सकता है क्लिक ना करें। अगर ऐसा हुआ है, मतलब हम हरिद्वार कितनी कथा सुनने गए, नहीं आप लोग भी हैं हम भी थे, हरिद्वार कितनी कथा सुनी मगर क्लिक ही नहीं गया उस टाइम। अब वो जो पॉइंट्स आप क्लिक करते हैं, क्या उस टाइम बोला था यार वो सही बोला था, उस टाइम तो जा रहे हैं सुन रहे हैं आधी नींद आ रही है आधा कुछ हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा क्या, महाराज अपने में हंसे जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं हंस क्यों रहे हैं भाई होता है नहीं होता है, हम तो क्यों हंस रहे हैं यार हमें नींद आ रही है वो हंसे जा रहे हैं क्योंकि उनको फीलिंग हो रही है, ही कैन अंडरस्टैंड, हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। उसको कहते हैं क्लिक करना, पिछले जन्म के पाप क्लिक नहीं होने देते, वो आपको समझ नहीं आएगा। सो जैसे सिद्धार्थ को क्लिक हो गया, नहीं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, एक बार सुना घर छोड़ दिया, बुद्धा बन गए। हमने कितनी बार सुन लिया, नहीं जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमें क्लिक नहीं हो रहा, अभी भी क्लिक नहीं हुआ हमें, मतलब 20 साल हो गए क्लिक नहीं हुआ। क्योंकि अगर आपको क्लिक हो जाए ना ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषानु दर्शनम, कि दुख है, अगर आपको क्लिक हो जाए तो आप एक सेकेंड चैन से नहीं बैठ पाओगे, फिर तो आपको लगेगा निकलो भैया यहाँ से हम नहीं बैठ सकते, फिर 24 घंटे नाम लेते रहोगे आप, चलते फिरते जाते और स्प्रे करते रहोगे भगवान प्लीज निकालो मैं तो फंस गया हूँ यहाँ पे, तब ये हालत है। तभी तो सिद्धार्थ बैठ गए थे, सिद्धार्थ जन्म मृत्यु जरा व्याधि देखी छोड़ के चले गए उसी टाइम, और पेड़ के नीचे जाके बैठ गए गया में और 6 साल बैठे रहे, यू कैन इमेजिन। और उन्होंने कहा मैं तब तक नहीं उठ रहा यहाँ से जब तक इस पहेली का मुझे उत्तर ना मिल जाए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलेंगे कैसे, मैं उठूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा। और फिर जब उनको जो निर्वाण जो भी हुआ तब वो उठे, हाँ भाई अब मैं निकल गया हूँ जन्म मृत्यु से, अब ठीक है, वरना तो एक कदम रखना भी डेंजरस है संसार में, पदम पदम। उन्होंने कहा मैं पदम रखूंगा ही नहीं बैठ ही जाऊंगा काम का हर पद पद में डेंजरस है ना, मैं पैर ही नहीं रख रहा जमीन पे, लो भैया मैं बैठ गया, मैं नहीं हिल रहा। इसको कहते हैं क्लिक होना। सो वो अब ये जो महाप्रभु दिखा रहे हैं ये क्लिक कैसे होगा, महाप्रभु से विरह हो रहा है, भगवान से विरह हो रहा है, ये सब क्लिक होना बहुत मुश्किल बात है, मगर ये हो सकता है अगर हम दो चीजें करें। महाप्रभु ने ही बताया तो इसलिए महाप्रभु दो बार साधु संघ बोल रहे हैं। पहले साधु संघ में तो हम सुनते रहेंगे नहीं होगा क्लिक, हरे कृष्णा मंत्र लेते रहेंगे, जब हृदय शुद्ध जाएगा ना एक दिन, फिर जब एक दिन सुनेंगे तो हम कहेंगे हो यार ये तो बात सही है, फिर हम एक्शन ले लेंगे लाइफ में और हमारा लाइफ सक्सेसफुल है। बस साधु संघ ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब ये मैं अंडरस्टैंडिंग बोल रहा हूँ। कई लोग इसलिए भी बोलते हैं साधु संघ सर शास्त्र का है, क्योंकि दो बार इसलिए बोल रहे हैं कि भुक्ति और मुक्ति की इच्छा साधु अपने शब्दों से नष्ट कर देते हैं और सर सिद्धि हो जाती है, जहाँ भोग और मोक्ष की इच्छा नहीं है वहाँ पे प्रेम मिल जाता है। सो इस तरह से भी इस श्लोक एक्सप्लेन किया जाता है। सो दैट जस्ट टू थिंग्स वी हैव टू डू, साधु संघ और भगवान का नाम, तो सर सिद्धि हो। और चैतन्य वो यही कर रहे हैं, चैतन्य वो क्या श्लोक है वो मैं बार बार बुलाता हूँ, कृष्ण भक्ति मूल जन्मे होए साधु संग, ये क्या है उसके, कृष्ण प्रेम क्या बोला, कृष्ण प्रेम जन्मे ते हो पुनः मुख्य संग, मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए मुख्य अंग है साधु संग, और कृष्ण प्रेम मिलने के बाद भी मुख्य अंग है साधु संग। अब छोड़ नहीं सकते किसी भी कंडीशन में साधु संग, कि अब तो मैं थोड़ा आगे बढ़ गया हूँ, थोड़ा सेफ हो गया हूँ तो साधु संग थोड़ा कम कर दें, नहीं हो सकता। आपने जिस दिन साधु संघ कम किया डेंजर में आ गए, हो सकता है आप गिरोगे नहीं, हो सकता है आप चलते रहो, हो सकता है आपने साधु संघ छोड़ दिया कम कर दिया, आपकी 16 माला भी चलती रहेंगी और आपकी पूजा भी चलती रहेगी, प्रसाद भी चलता रहेगा, सब चलता रहेगा। आप कहोगे क्या प्रॉब्लम हो गई, ये तो सब सही चल रहा है, मगर एक्चुअली प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि आप अनसेफ हो गए, गार्ड नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है मगर कब तक सही चलेगा किसी को नहीं पता। नहीं, भरत महाराज की गलती हो गई थी, नहीं भरत महाराज का सब कुछ सही चल रहा था, नाम लेते आंसू भी आ रहे थे, जब तो सब फिट हो गया, अब तो मैं मतलब ऑलमोस्ट परफेक्ट हो गया हूँ, मतलब मेरे आंसू भी आ रहे हैं नाम लेते ही, सब ऐसे ही हो रहा है तो ठीक है। जहां उन्होंने साधु संघ छोड़ा वहां पे वो अनसेफ हो गए, माया का अटैक, और माया ने अटैक कर दिया बस, एंड देन ही फेल डाउन, दैट्स ऑल। सो हमें तो अपने को सेफ रखना है ना, स्पेशली इस कलयुग में जहाँ पे हर डायरेक्शन से एरोज आ रहे हैं, हर डायरेक्शन से माया का अटैक हो रहा है, बाहर से भी अंदर से भी, इट्स वेरी अनसेफ सिचुएशन। और माया बहुत स्ट्रांग है, नहीं माया अगर माया तो कोशिश करेगी कि आपको मार ही दे, माइंड डिस्टर्ब तो बहुत छोटी बात है, डेथ मार दो खत्म करो स्टोरी इनकी यार काम ही खत्म, ना रहेगा पास ना मैं देखी बात हो रही। माया बहुत स्ट्रांग है कलयुग में, सतयुग में शी नॉट किल पीपल, सतयुग में तो माइंड भी डिस्टर्ब नहीं होता था, नहीं त्रेता युग द्वापर युग में माइंड डिस्टर्ब होता था। सो कलयुग में माया के पास पूरी स्ट्रेंथ है, क्योंकि युग किसका है, कली का युग है, उसका राज्य है, तो यहाँ पे वो कुछ भी कर सकती है, यहाँ पे शी कैन इवन किल यू, पूरी फोर्स में है। और इसलिए महाप्रभु का मूवमेंट भी पूरी फोर्स में है, ये भी तो पूरी फोर्स में आए भैया, वो पूरी फोर्स में है तो हमें भी पूरी फोर्स में आना पड़ेगा। इतने सारे शुद्ध भक्त महाप्रभु लेके आ गए, पूरा वैकुंठी उतार दिया यहाँ पर, यू कैन इमेजिन। मतलब पहले तो विष्णु आते थे, एक एक विष्णु आए, वामन अवतार, मत्स्य अवतार, परशुराम अवतार, पहले के युगों में, क्योंकि माया इतनी फोर्स में नहीं है तो ठीक है एक ही अवतार से काम चल जाएगा। कलयुग में तो माया के पूरी फोर्स में, महाप्रभु ने कहा भैया हो गया, वैकुंठ में अलार्म बजा टे सारे विष्णु आ जाओ, पूरा वैकुंठ सब विष्णु, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, महाविष्णु, करुणदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, सबके सबको लेके आ गए महाप्रभु नवदीप में। कैन इमेजिन, शिव जी, ब्रह्मा जी, एम्प्टी वैकुंठ इज एम्प्टी, सब नवदीप में। सो ये भी पूरी फोर्स में चल रहा है, वो भी पूरी फोर्स में चल रहा है। अब हमारा, हम पे डिपेंडेंट है, अगर हम इस मूवमेंट में रहेंगे पूरी फोर्स में तो निकल जाएंगे। यहाँ पे अगर हम सेफ नहीं रहे महाप्रभु के भक्तों के साथ, तो वो भी पूरी फोर्स पे चल रहा है और वो आपको खींच के ले जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। सो बहुत डेंजरस हो गया है नहीं मामला, मतलब हमारे पिछले 5 सालों में कितने डिवोटीज की डेथ हो गई, कैन इमेजिन, मतलब पिछले दो साल में हमें ये डिवोटी चले गए, भी वो डिवोटी चले गए, वो अब गोलोक, हम कह सकते हैं गोलोक गए, बट नोबडी नोस कि कौन गोलोक गया कौन गोलोक नहीं गया। ये बहुत टफ है बताना इन चीज़ों को। सो माया पूरी पूरे मूड में है नहीं कि इस कौन को किसी तरह, क्योंकि माया को पता है अगर कोई मूवमेंट है जो इस संसार को बढ़ा सकता है वो केवल इस कौन है। और प्रभुपाद ने ही बोला था कि अगर तुम लोग सिंसियर नहीं होगे तो ये मूवमेंट रुक जाएगा, क्योंकि माया पूरी फोर्स में, माया पूरी कोशिश कर रही है कि लड़वा दो भैया एक दूसरे को, या मार ही दो, या इनको अलग अलग कर दो, कुछ ना कुछ बस करना है, बस किसी तरह बीमार कर दो, चैंटिंग ही नहीं होगी, कर लो चैंटिंग। इसलिए एक्चुअली अगर आप विदुर नीति पढ़ोगे ना, तो विदुर जी की बहुत अच्छी एडवाइस है कि जल्दी से जितनी शक्ति हो उतनी भक्ति कर लो, इससे पहले कि बीमारी आ जाए। मृत्यु की तो बहुत दूर की बात है बीमारी बोल रहे हैं वो, मतलब हम कहते हैं ना जल्दी भक्ति कर लो मृत्यु आ जाए, विदुर जी ये नहीं कह रहे, विदुर जी कह रहे हैं भक्ति कर लो इससे पहले बीमारी आ जाए, बीमारी आ जाएगी तो ठन ठन गोपाल हो जाएगा आपका सब। कौन से है
कौन राजन इंद्रियवान?
अच्छा मुझे नहीं पता। हाँ हाँ, जब तक इंद्रिया ठीक है तब तक भक्ति कर लीजिए, या दैट्स अ वर्स। सो बीमारी आएगी तो छूट जाएगा सब, 100% छूट जाएगा, माइंड डिस्टर्ब होता रहेगा, आप नहीं कर पाओगे। मगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हम बीमार
नहीं
हैं, ये एज्यूम करते हैं, सीधा मर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। प्रभुपाद ने बोला है कि तुम सब बीमार हो गए और बुढ़ापा आएगा, बीमारी बुढ़ापे में आती है ना, वो बात कह रहे होगा और इसके लिए तैयार रहो। प्रभुपाद कह रहे हैं मैं सिखा रहा हूँ ये, क्योंकि बीमारी में भी भक्ति कैसे करनी है। प्रभुपाद बीमार हो गए थे ना, एंड मैं प्रभुपाद ने कहा मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि कैसे भक्ति करनी है बीमारी में। सो हमारे सबके साथ ऐसा होगा। प्रभुपाद ने बोला अपने लेक्चर, डोंट थिंक दैट यू विल नॉट बिकम डिजीज्ड एंड नॉट सफर, मानने वाले डोंट थिंक यू विल नॉट सफर, तुम भी सफर करोगे। मायापुर में इस बार लेक्चर नहीं सुन रहे थे, वो भी तो कह रहे थे डिवोटी कौन कह रहा था कि कौन डिवोटी कह रहे थे कि डोंट थिंक यू विल नॉट सफर, सफरिंग्स आएंगी और उसमें भी हमें भगवान की भक्ति करते रहे, मगर उससे पहले अगर उस टाइम पता नहीं ना, उस टाइम कुछ कह नहीं सकते। अब अगर आप मतलब आपके एक छोटा सा यहाँ पे अगर कोई चोट लग जाए इसी में मन चला जाएगा, आप नहीं कर पाओगे चैंटिंग, नहीं कैसे भीड़ बैग में उंगली नहीं घुस रही, हरे कृष्णा उसी में सारा माइंड लगा रहेगा, क्या हो गया यार, डर लगेगा। और कैंसर हो गया तो आप के बल्ले बल्ले हैं फिर तो छक्के छूट जाएंगे, चाहे डर नहीं हो रहा फिर भी छक्के छूट जाएंगे। वह रिपोर्ट आ गई ना कैंसर है भाई फिर तो चाहे कोई डर नहीं है, सब कुछ फिट है, रिपोर्ट आ गई ना वहां पे लिखा हुआ, हो छूट जाएंगे। सो प्रिकॉशन इज बेटर देन प्योर, सुना है? तो इसलिए अभी हमें मतलब क्या कहते हैं उसको, टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए ये हेल्थ, और ये जो हमें भगवान ने अच्छी सिचुएशन दी है ना अपना भजन करने के लिए, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद ने बोला नहीं, फिनिश योर बिजनेस, कितनी बार बोला अपने लेक्चर में, फिनिश योर बिजनेस इन दिस लाइफ, क्योंकि पता नहीं फिर करोड़ों जन्मों बाद, करोड़ों जन्मों बाद आपकी चोटी होगी, उससे पहले तो मान लेके घूम रहे होंगे, चोटी होना बहुत बड़ी बात है। भविष्य पुराण में लिखा, मैं नहीं कह रहा, भविष्य पुराण में लिखा है कलयुग में जिस व्यक्ति, जिन व्यक्ति की चोटी होगी वो बहुत भाग्यशाली है। चोटी मतलब ऑफकोर्स लोग तो समझे चोटी है तो
बैकवर्ड है,
बट भविष्य पुराण लिखा है कि जिन लोगों का हेड शेव्ड होगा और उनकी चोटी होगी वो बहुत भाग्यशाली है कलयुग में स्पेशली। सो करोड़ों जन्मों बाद ऐसा अवसर मिलेगा। जिन लोगों की चोटी होगी वो भाग्यशाली है, मतलब मैं सोच रहा था, मतलब ये मेल्स के बोला है फीमेल्स के लिए बोला है, वांट टू बी नोटेड। सो अगर इस पर थोड़ी आप डिस्कशन करो तो फीमेल्स की तो पहले चोटी होती है, नहीं अच्छी औरतों की होती है, मतलब अच्छी औरतें तो चोटी बनाती हैं, आजकल की गंदी औरतें बॉब कट और वॉब कट रखती हैं तो सो आई थिंक वो श्लोक उन पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। विदाउट हेड शेव है बस ये विदाउट हेड शेव है, बट उसका भी मैं सोच रहा था विदाउट, मतलब अगर घूंघट पहन लोगे तो शायद इट्स ऑलमोस्ट लाइक हेड शेव ही, मतलब यू आर नॉट, आई डोंट नो इफ यू आर, जस्ट स्पेकुलेशन कर रहा हूँ, पता नहीं शास्त्र मेल्स के तो नहीं लिखेगा, आई डोंट नो, मेल चौवनिस्ट। चोटी दीक्षा से पहले भी हो सकती है कि किसने कहा है चोटी नहीं हो सकती, आपकी नहीं है, होनी चाहिए। सो दैट्स अबाउट महाप्रभु। तो महाप्रभु यहाँ पर एक्चुअली एक श्लोक आ रहा है, मैं ये पूरा नहीं पढ़ रहा, बट यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्रभु प्रेमावेशे करें गान नर्तन, कभू भावावेशे रास लीला अनुकरण। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु प्रेमावेश में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं और रास लीला का कीर्तन कर रहे हैं, और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु के बारे में कृष्णा कर स्वामी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और फिर लिख रहे हैं कोटि युग पर्यंत यदि लिखा है गणेश, अगर करोड़ों युगों तक गणेश जी महाप्रभु की लीला में लिखते रहे, एक दिन लीला तबु नहीं पाए शेष, वो एक दिन की लीला भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अब ये भी हम इमेजिन नहीं कर सकते, नहीं कितना कर लेंगे महाप्रभु, एक दिन का कितना अकाउंट हो जाएगा। बट कृष्णा गोस्वामी लिख रहे हैं कि अगर गणेश कोटि युग तक भी लिखते रहे एक दिन का अकाउंट तो भी खत्म नहीं होगा, महाप्रभु एक दिन में इतनी लीलाएं करते थे, हो सकता है कि हमें परसीव ही नहीं हो रही वो लीलाएं, मतलब हम होते तो हमें वो, हम उस वो परसीव ही नहीं कर पा रहे चीजें जो कि ये लोग कर पाएंगे। और एंड दैट्स व्हाट महाप्रभु एक्सप्लेनिंग है। ये श्लोक बहुत अच्छा है, दो श्लोक में पढ़ना आ रहा था। ये रहा, कृष्णेर नाचाए प्रेम भक्तेर नाचाए, आपन नाचाए तीन नाचे एक ठाई। स्वामी लिख रहे हैं कि जब कि कृष्ण नाचते हैं प्रेम में, भक्त नाचते हैं प्रेम में, और स्वयं प्रेम नाचते हैं, तीनों नाचते हैं जब एक साथ, तब कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। और चैतन्य महाप्रभु ये दिखा रहे हैं अपने एक्शन से, प्रेमेरा विकार वर्णिते चाहे जय जन, चांद धरिते चाहे जैन होए वामन। एक्चुअली ये बहुत अच्छा श्लोक कह रहे हैं कि प्रेम के बारे में जो वर्णन करना चाहता है वो उसी प्रकार है जिस प्रकार वामन, वामन पता है बौना, जिस प्रकार एक बौना चांद को छूना चाहता है, मतलब बौना क्यों बोला है वैसे, ऑर्डिनरी आदमी भी नहीं छू सकता, बट जिस प्रकार बौना चांद को छूना चाहता है असंभव है, उसी प्रकार प्रेम का वर्णन जो करना चाहता है वो असंभव है, प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते। बट फिर भी महाप्रभु ने प्रेम की डेफिनेशन हमें दी है, मगर फिर भी जैसे आपने कहा कि मैं प्रेम के सागर की एक बूंद तुम्हें दे रहा हूं, अब तुम खुद ही इमेजिन कर लो कि प्रेम क्या है, नहीं आई एम जस्ट गिविंग यू अ इंकलिंग। सो प्रेम वर्णन नहीं कर सकते, प्रेम को अनुभव ही कर सकते, वो इंटेलेक्चुअली वर्णन नहीं हो सकता, जिसको अनुभव हो रहा है उसको हो रहा है, जिसको नहीं हो रहा उसको नहीं हो रहा, बस आप बोल सकते हो, सुन सकते हो, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ज्ञान हो सकता है, विज्ञान नहीं हो सकता, वो सब भगवान की कृपा से आता है। इसलिए प्रभुपाद ने अपने लेक्चर में बोला है आप मेहनत करके मध्यम अधिकारी बन सकते हो, उत्तम अधिकारी तो भगवान की कृपा से बना आता है और उसके ऊपर नहीं जा सकते हम। लड़ झगड़ के एक स्तर तक जा सकते हैं, सेकेंड स्टोरी तक जा सकते हो, या थर्ड फोर्थ, मगर फिफ्थ सिक्स सेवेंथ पे जाने के लिए सीढ़ियाँ नहीं है। वहाँ पे जाने के लिए तो फिर भगवान ही उठाएंगे आपको। सो यहाँ प्रेम तक आने के लिए तो भगवान उठाएंगे। और भगवान किसको उठाते हैं? किसको उठाते हैं? ऑफकोर्स भक्त तो सभी हैं, हम में से एक को उठाएंगे भगवान। हम सब भक्त हैं कुछ नहीं कह सकते हैं। बड़े बड़े लोग रह जाते हैं और पता नहीं कौन निकलता है। सो किसको उठाते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है? इतने सारे डिवोटी हैं, किसको भगवान? सब कोई सेकंड फ्लोर पे, यहाँ पर कोई थर्ड फ्लोर पे, कोई फोर्थ फ्लोर पे, फिफ्थ फ्लोर तक सीढ़ियां नहीं है, वहां पे किसको उठाएंगे? वहां खुद नहीं आ सकते। दैट यू कैन से लौल्यम तो एक अलम मूल्यम। सो किसको उठाएंगे? इसके दो आंसर हो सकते हैं। एक आंसर है भगवान उसको उठाएंगे जिसको झुकना आता है, जिसको झुकना नहीं आता उसको नहीं उठाते भगवान। सो ये एक एग्जांपल देते हैं, जो जितना झुकेगा उसको भगवान उतना उठा देंगे। सो हम में से जो सबसे ज्यादा दीन होगा उसको भगवान उठा देंगे। कृष्णा लाइक्स हम्बल डिवोटीज, वरना अब नीचे ही रहो, अभी नहीं, अभी नीचे ही रहो। सो दीनता क्या है? क्वेश्चन है दीनता क्या है? मैंने दो आंसर कहे थे मगर वो दो आंसर एक ही है। दीनता क्या है? दीनता मतलब कि आपको समझ आ गया, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जब फोर्थ फ्लोर पे पहुंचे ना, आपको समझ आ गया भैया इसके आगे मैं अपनी शक्ति से नहीं जा सकता, हे कृष्णा प्लीज हेल्प मी, मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, आपको प्राप्त नहीं कर सकता खुद, मगर आपको प्राप्त किए बिना मैं जी भी नहीं सकता, इसको कहते हैं लौल्यम। वो दीनता से आती है। अभी नहीं है ना लौल्यम, ये सब नहीं है ना, हम तो नहीं भगवान से कह रहे हैं भगवान आपकी आपके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, जैसे मीन जल के बिना जिंदा नहीं है। जयदेव गोस्वामी का सॉन्ग है, जल बिना मीन नहीं, कैसे है वो सॉन्ग, वेरी वेरी नाइस सॉन्ग। जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती और चांदनी के बिना चांद नहीं है, उसी प्रकार भगवान के बिना भक्त नहीं रह सकता। हर सेकंड ये जो लौल्यम है ये दीनता से आता है। हमारे में लौल्यम नहीं क्योंकि हम दीन नहीं है, क्योंकि अभी भी हम सोच रहे हैं कि जैसे भौना चांद को छू लेगा, अभी भी हम सोच रहे हैं कि हम अपने प्रयास से भगवान को प्राप्त कर लेंगे, वो संभव नहीं है। तो क्या प्रयास छोड़ दें? प्रयास करना छोड़ देंगे फिर? प्रयास तो करते ही रहते हैं हम, मगर ये हमें पता है कि उस प्रयास को फलित करने के लिए, वो प्रयास में फल लगे उसके लिए कृपा की जरूरत है, वरना असंभव है। तब भक्त के हृदय से रोना निकलता है। प्रभुपाद कह रहे हैं क्राइंग लाइक अ चाइल्ड फॉर मादर हरा, कह नहीं रहे प्रभुपाद? तब रोना निकलेगा चैंटिंग करते वक्त, हे कृष्णा, हे राधा, आपकी कृपा के बिना नहीं हो सकता है। मगर हमें रोना नहीं आ रहा है किसी को? नहीं आ रहा, क्योंकि हम दीनता नहीं है हमारे हृदय में। हम सोच रहे हैं कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे राम, सोलह माला वही हो गया, बस हो गया, कर लिया हमने, हो गया, मतलब दैट्स ओके, फिनिश। मगर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, आइडियली कुछ नहीं हुआ, आइडियली अभी यू अंडरस्टैंड, हमें ज़्यादा विश्वास अपने प्रयास पे है कि चैंटिंग कर लेंगे हम, प्रसाद ले लेंगे, प्रोग्राम चले जाएंगे और सब कुछ फिट हो जाएगा, मगर फिट नहीं होगा ऐसे। सो हमें प्रयास इस तरह करने हैं कि भगवान खुश हो जाए, कृपा आए, तब मामला सॉल्व होगा, वरना सॉल्व नहीं होने वाला। सो दैट वे डिफरेंस है, जो दीन भक्त है उसके प्रयास और जो ऑर्डिनरी भक्त है उसके प्रयास में डिफरेंस होता है। दोनों प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं है दीनता में वो प्रयास ही छोड़ देगा, वो फिफ्थ फ्लोर पे चित लेटा हुआ है, फोर्थ फ्लोर पे भगवान सारी माला छोड़ दी, वो तो थर्ड फ्लोर पे कर रहा था, मैं यहाँ पे सारा प्रयास मैं आप पे डिपेंडेंट हूँ। दैट्स अ डिफरेंस, जो जो दीन भक्त है उसके प्रयास और जो दीन नहीं है उसके प्रयास में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, आप बताओ क्या डिफरेंस है, क्या उत्तर है? दोनों प्रयास कर रहे हैं मगर दोनों में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? अभी तो बताया मैंने,
भगवान की कृपा देगी उसकी, भगवान की कृपा, लॉलियम होता है प्रयास के साथ।
Well, some practical answer you have to give me. There's a difference. Practically, there's a difference. The theoretical answer है ना?
तो दीनता के साथ प्रयास करता था कि गुरु ने आगे दी तो उसके बिना।
वो तो वो भी कर रहा है दीनता के साथ।
हो सकता है दीनता के साथ भी।
नहीं, practical difference. I don't want a theoretical answer. Practical answer. एक difference है। एक difference है, अगर मैं आपको बता दूँगा तो आप भी उसको apply कर सकते हो। And you can make a difference in your life. Point ही है। ऐसा आंसर मुझे चाहिए जो आप इस क्लास के साथ सोचो कि भैया अगर मैं अभी ऐसे प्रयास कर रहा था और दीनता से प्रयास करने का मतलब ये है और मैं वैसे प्रयास करूंगा तो आ जाएगा लॉलियम, तो वो क्या क्या डिफरेंस है? तो आप छोटा बच्चा बनना चाहती हो, प्रैक्टिकल आंसर चाहिए। यू अंडरस्टैंड मैं क्या पूछ रहा हूँ? You can make a difference in your life. अगर आप ये जानते हो तो, नहीं जानते तो नहीं कर पाऊंगा। So, आपको पता है, वैसे मैं बताऊंगा तो पता है मगर उस पॉइंट पे याद नहीं आता। नहीं, सो दीन भक्तों के प्रयास में फर्क ये है कि एक दीन भक्त, एक जो जो दीन नहीं है वो भक्त प्रयास करता है तो वो प्रयास करता ही रहता है। नहीं, वो करता रहेगा प्रयास, प्रयास, दैट्स ऑल। दीन भक्त प्रयास करता है तो वो इस तरह प्रयास करेगा कि भगवान उससे, उसके प्रयास से इम्प्रेस हो। गोपाल ने बोला है, नहीं बोला है? भक्ति इस तरह मत करो कि भगवान को देखना चाहो, भक्ति इस तरह करो कि भगवान आपको देखने आए। फर्क हो गया ना दोनों में। ऑर्डिनरी भक्त प्रयास करेगा, सिंपल सिंपल प्रयास चलता रहेगा उसका, फिलमाला हो गया, प्रसाद हो गया, ये हो गया, चलो फिट है। मगर एक दीन भक्त को पता है, नहीं भाई, वो इस तरह, वो ऐसा प्रयास करेगा कि भगवान भी इम्प्रेस हो जाए उसके प्रयास से। भगवान भी कहें, भैया ऐसा प्रयास तो मैंने देखा ही नहीं। क्यों वो इतना प्रयास कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि फोर्थ फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर वो नहीं जा सकता, मगर ये तो हो सकता है कि वो भगवान नीचे आ जाए फिफ्थ से, और वो तो तब आएंगे जब आपका प्रयास एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, वरना क्यों देखने आएंगे, क्यों आएंगे ऊपर से नीचे? तभी तो आएंगे, भैया क्या नीचे चलते हैं देखने, फिर नीचे आएंगे देख के फिर ऊपर ले जाएंगे। तो ये दीन भक्त का प्रयास एक्चुअली और इंटेंस होता है, इतना इंटेंस होता है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रयास करता है, एक्चुअली एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और इसको कहते हैं दीनता। मगर ये समझना मुश्किल है। नहीं, लोग उल्टा समझते हैं, लोग समझते हैं प्रयास छोड़ना दीनता है नहीं, ऐसा समझते नहीं सहज लोग, ये प्रयास छोड़ना भगवान अब तो आप पे शरण है, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा मुझसे। मगर एक्चुअली नहीं है प्रभुपाद सब लोग, क्योंकि उनको पता है कि अगर भगवान नीचे नहीं आए मुझे लेने तो मैं तो गया काम से, मैं तो गया काम से। इसलिए किसी भी तरीके से वो भगवान, वो चाहता है भगवान उसको, उसके पास किसी भी तरीके से आ जाए तो वो कुछ भी करने को तैयार है। यू सी, इसलिए वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रयास कर रहे हैं। वो इतना दीन हो गया कि उसको पता है, भैया इस लेवल से मैं ऊपर नहीं उठ सकता, मैं जा ही नहीं सकता इस लेवल से ऊपर, भगवान को ही मुझे लेने आना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता। अब वो तब आएंगे जब मेरा कुछ, मैं कुछ करके दिखाऊंगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तब वो आएंगे, अदरवाइज नहीं हो सकता। इसलिए ये प्रयास नहीं करेगा। इसलिए अगर दीनता से प्रयास करना आते हो तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रयास करना पड़ेगा, वरना नहीं जा सकते भगवान के पास, तब आप यहाँ पहुँच जाओगे। महाप्रभु गिफ्ट देने को तैयार है, सो आपके हाथ में, ये तो आप कर सकते हो। नहीं, आपके ऊपर है यथाशक्ति, अपनी शक्ति, यथाशक्ति अपनी शक्ति बढ़ाते रहो। आइडिया ये है, यथाशक्ति यथाशक्ति नहीं रहे, दैट्स नॉट द आइडिया। सो कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे आएंगे, ऐसा भी होता है, नो प्रॉब्लम्स। नहीं, समुद्र में कभी लहरें ऊपर जाती हैं कभी नीचे आती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर धीरे धीरे ऊपर बढ़ते रहो, उसको भगवान ले जाएंगे बस, दैट्स ऑल, और उसको ये प्रेम मिल जाएगा, तब हम ये समझ पाएंगे महाप्रभु के सारी चीजें। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना कुछ कहना है? स्टॉप है ना।
ये दुख दोषानुदर्शन
हाँ
जो श्लोक है,
है?
दुख दोषानुदर्शन जो श्लोक है
हाँ,
उसमें दोष क्यों कहा है? दुख तो समझ आ रहा है, दोष क्यों?
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, जन्म मृत्यु दुख है और दोष है, दो चीजें कही है, नहीं दो चीजें है ना, तो दुख तो है, ये तो हमें समझ आती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख का, तो दुख दोष ही तो होता है, होता नहीं होता, दुख होना दोष ही तो है, दुख होना दोष है लाइफ में, दुख होना दोष ही है, दोष मतलब फॉल्ट। सोल इज ऑलवेज हैप्पी, सोल दुख एक्सपीरियंस करेगी वो फॉल्ट है। सो इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख देता है, दुख क्यों देता है? क्योंकि उसमें दोष है। दोष क्या है कि दुख क्यों मिलता है? क्योंकि दोष यह है कि वो टेम्पररी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि वो हमें बॉडीज दे देके हमें टेम्पररी लाइफ्स करता रहता है, परमानेंट सिचुएशन में नहीं रहने देता वो, तो ये दोष है, इसलिए हमें दुख मिलता रहता है, इसलिए कह रहे हैं दुख दोषानुदर्शन, दुख होना ही दोष है, आत्मा को दुख नहीं होना चाहिए। आइडियली आइडिया ये है, हम बने ही हैप्पीनेस के लिए, है नहीं? आत्मा बनी ही आनंद के, आनंद को अनुभव करने के लिए। अगर आप भक्ति करो आपको दुख होगा ही नहीं, मगर प्रॉब्लम ये है कि दुख हो रहा है क्योंकि हम जन्म मृत्यु में फंसे पड़े हैं, जन्म मृत्यु में फंसे पड़े हैं इसलिए दुख हो रहा है, वो दुख एक बहुत बड़ा दोष है। आइडिया ये है, और आप ऐसी लाइफ अनुभव कर सकते हो जिसमें कोई दुख नहीं, अनअलॉयड हैप्पीनेस, बात कह रहे हैं, देयर इज नो अनहैप्पीनेस, नो मिस्ट्रीज, ये भगवान समझा रहे हैं। इसलिए अगर तुम जन्म मृत्यु से बाहर निकल जाओगे तो ये दोष खत्म हो जाएगा, हमेशा आनंद अनुभव होगा, कभी दुख अनुभव होगा ही। मगर क्वेश्चन यहाँ पर एक है, क्या क्वेश्चन है आपका कुछ?
इसके बाद आप पहले
भूल मत जाना, मगर क्वेश्चन एक है कि कभी भी डिवोटी को दुख अनुभव नहीं होता क्या? हाँ, भगवान तो कह रहे हैं कभी दुख नहीं होगा। अगर मान लीजिए डिवोटी के फैमिली में किसी की डेथ हो जाए तो दुख होगा नहीं होगा? तो फिर
विचलित नहीं होता, बस दुख तो होगा, विचलित नहीं होगा भक्ति से।
एक्चुअली जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं कि डिवोटी को दुख में भी सुख होता है, इसलिए उसको कभी दुख नहीं होता। सो अगर डिवोटी के फैमिली में कभी डेथ होती है तो थोड़ा सा उसको दुख होगा, मगर फिर उसको सुख होने लगेगा, चलो यार झंझट छूटा, काम खत्म हुआ, फंसा पड़ा था मैं आसक्ति में, शुरू में तो दुख होगा, फिर उसके नेक्स्ट थॉट उसका आ जाएगा यार चल आसक्ति तो टूटी यार, खत्म हुआ काम। अब अगर आप डिवोटी हो तो ऐसा हो जाएगा, मिलना नहीं होगा। और मैंने देखा भी है, मैं बता नहीं रहा था, रामानंद प्रभु है एक मैंगलोर में है अभी, तो ही वॉज ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, अच्छे ब्रह्मचारी थे, तो उनको फोन आया, मैं भी था, तो उनको फोन आया कि उनके फादर में का एक्सीडेंट हो गया, दे डाइड, तो उन्होंने फीस्ट बनाई थी उस दिन। मैंने कहा भाई ये क्या है? कहते हैं भैया मैं एक ही अटैचमेंट थी, बाबा मिलने जाना था, आते थे, अब वो चले गए, ठीक है अब मैं आराम से भक्ति करूँगा। एक लेवल चाहिए उसके लिए, एंड दैट वॉज अ गुड लेवल दैट टाइम। हार्ट हार्टेड क्या?
कभी कभी ऐसा भी हो, आपने बोला कि किसी की अगर डेथ होगी तो खुश होता है कि आसक्ति खत्म होगी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आसक्ति और बढ़ जाती है।
और कहाँ बढ़ भूल जाते हो, कहाँ फोटो टंग जाती है, फिर प्लास्टिक के फूल होते हैं, सब भूल जाते हैं, किसको याद है, किसको याद है? आपने दादा और उनको देखो, दो तीन रोए होंगे, फिर फोटो खत्म जाएगी, फूल के लटके होंगे, आप टीवी देख रहे होंगे उसी रूम में, तो दादाजी देख रहे हैं भाई क्या हो गया, उस टाइम तो बहुत रो रहा था। सो हम वैसे नहीं है, हम ना वी फॉरगेट, हम हार्ड हार्टेड हैं, एक्चुअली है ही हम हार्ड हार्टेड, सीता की तरह नहीं है, गोपियों की तरह नहीं जो रोए जा रहे हैं भगवान के बिना, हम ऐसे थोड़े ना, क्योंकि संसार ही ऐसा है हमारा, और हम हार्ट हार्टेड भी नहीं है, किसी भी जीव का एक दूसरे जीव से संबंध हो ही नहीं सकता, वो संभव ही नहीं है, वो फिलॉसफी है। जीव और जीव का संबंध नित्य हो ही नहीं सकता, भूल जाओगे चाहे कितना ही कर लो, चाहे कितना ही सॉफ्ट हार्टेड हो भूल जाओगे। नहीं होते हैं कई लोग सॉफ्ट हार्टेड, नहीं मतलब कई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनके यहाँ डेथ हो जाए एक एक, एक महीने तक दुखी रहते हैं, होते नहीं होते हैं पड़े दुखी हैं फिर सब भूल जाते हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, नित्य संबंध है ही नहीं हमारा। सो हार्ड हार्टेड सॉफ्ट हार्टेड वाली बात नहीं है, हो ही नहीं सकता संबंध, दैट्स ऑल, कभी नहीं हो सकता। भगवान कहा वो ध्यान नहीं आता, यहाँ पे झूठे संबंधों में
भूलते हैं।
सो दैट्स द पॉइंट, ही गेव अ फीस्ट, मतलब ऐसा नहीं कि उनको दुख नहीं हुआ, उन्होंने उन्होंने सुना और ही बिकेम थोड़ा दुख हुआ, मगर उस दुख में भी उस सुख आ गया उनको, उस दुख की सिचुएशन ने हैप्पीनेस प्रोड्यूस कर दी क्योंकि नॉलेज थी ना, तो दुख योनि आते, उस दुख की योनि में सुख है डिवोटी के लिए। ऑर्डिनरी आदमी के लिए दुख ही दुख है, वो समझ आ गया यस फिनिश हो गया मामला, चलो भाई अच्छा है यार खत्म हो गया, फ्री हो गए, अब ना फोन करना पड़ेगा ना ना के मिलना पड़ेगा, वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। बट दैट नीड्स अ लेवल, उसके लिए लेवल चाहिए, एक स्ट्रांग लेवल। मगर पॉइंट है ऐसा नहीं है कि ये थ्योरी है, मैंने ऐसे लोग देखे हुए हैं कि दुख में भी सुख होता है, मतलब मैंने देखा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, मैं सिर्फ पढ़ा नहीं हुआ। सो दैट्स अ गुड थिंग।
आपने लेक्चर्स में कई बार बताया कि हमारी सर्विस है भगवान के लिए हैप्पी रहना।
हाँ ये तो है, सर्विस तो है।
तो अपने वर्क के स्ट्रेस में, फैमिली के उसमें और इन सब चीजों में एक डिवोटी इन सब चीजों को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करेगा, प्रैक्टिकली हैप्पी कैसे रहेगा?
हैप्पी स्माइल प्लीज, याद अभी तो कह रहा हूँ आपको तो आता है। स्ट्रेस में आप कितने ही हो बाहर से हैप्पी रह सकते हो, यही तो सर्विस है, यही तो सर्विस है। सर्विस मतलब ही होता है कि आप ऐसी चीज करो जिसमें आपका एक्चुअली स्पॉन्टेनियसली मन नहीं लग रहा अभी फिलहाल, सेवा वही है ना, सेवा में मन नहीं लग रहा ना,
जॉब पे भी कस्टमर केयर में हंसते रहना पड़ता है।
हाँ हंसते रहना पड़ता है आपको, कॉल सेंटर में तो हंसते रहना पड़ता होगा।
और मिरर रखवा रहे थे सामने की
है,
लुकिंग एट योरसेल्फ कि आप स्माइल कर रहे हो कि नहीं कॉल लेते,
ऐसा है
जो लोग नहीं करते उनके सामने मिरर रख देते हैं।
अच्छा कि तू देख ले कि अच्छा
देख तू स्माइल करेंगे तेरी कॉल अच्छी नहीं जाएगी नहीं तो।
सो दैट्स द आइडिया, सो बाहर से हम हैप्पी रहते हैं कि हमारी सर्विस है, क्योंकि हम हैप्पी नहीं रहेंगे तो डिवोटीज हैप्पी नहीं रहेंगे, डिवोटीज भी हैप्पी नहीं रहेंगे, भगवान तो चलो उनको पता ही है आपके अंदर ही बैठे हैं कि ये दुखी है, स्ट्रेस्ड है, क्या है। सो इतने स्ट्रेस में भी डिवोटी हमेशा हैप्पी रहेगा कि जिससे औरों को एनकरेजमेंट मिलती रहे, अदरवाइज वो अपना भी अहित कर रहा है दूसरों का अहित कर रहा है। सो ये कैसे होगा वो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है ना, कैसे होगा
ये भी। और दूसरा आपने बताया कि हमें वैसे भी हैप्पी रहना चाहिए, दुख से दुखी नहीं।
हाँ क्योंकि भगवान, क्योंकि भगवान भी दुखी हो जाते हैं, अगर आप दुखी हो गए तो भगवान भी दुखी हो जाएंगे।
अब ये कैसे होगा?
नहीं तो भगवान देखेंगे भैया कि ये दुखी हो रहा है तो भगवान देख के दुखी तो होंगे, क्योंकि माँ बाप तो दुखी होते हैं जब उनके बच्चे दुख होते हैं। सो मगर कैसे होगा क्वेश्चन है, नहीं कि इतना स्ट्रेस होने के बाद भी, इतना दुख होने के बाद भी हम खुश रहें, किसी को पता है कैसे होगा, कैसे कर सकते हो ना दुख होने के बाद भी सुखी रहे।
कई बार बच्चों के साथ होता है हम दुखी आते हैं लेकिन पता नहीं लग जाए, घर पे पता नहीं लग जाए कि बच्चों को पता नहीं लग जाए, वाइफ को पता नहीं लग जाए, मम्मी को पता नहीं लग जाए कि भाई दुखी हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ।
अच्छा 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 ऐसे भी होता है
कि भाई उनको पता नहीं लगे मैं दुखी हूँ।
दूसरों को हटके देने के
इसका तरीका एक ही है अभी जहाँ तक मेरे को रियलाइजेशन है कि ये वही कर सकता है जिस जो हमेशा कॉन्शियस है कि भगवान मुझे देख रहे हैं, वरना नहीं कर सकते। जैसे ही भूल जाओगे कि भगवान देख रहे हैं वैसे ही आप इस चक्कर में पड़ जाओगे, दुख सुख में द्वंद में पड़ जाओगे। अगर आपको पता है भगवान हमेशा देख रहे हैं आप दुखी नहीं हो सकते फिर, क्योंकि भगवान दुखी हो जाएंगे ना। सो यू कांट, यू फील द प्रेजेंस ऑफ सम अदर पर्सन, तो फिर आप सेंसिटिव रहोगे उस इमोशंस के, यही होता है ना दूसरे
पॉइंट,
क्योंकि दूसरा आदमी होता है तो सेंसिटिव होते हैं ना इमोशंस के, है नहीं कि कोई बैठा है अभी इसको कैसा फील होगा, तो हम नहीं बोलते हम ठीक है चलो तो जब आपको फील होता रहेगा ना कि भगवान प्रेजेंट है मेरे साथ, तो आप भगवान के इमोशंस के लिए सेंसिटिव हो गए। इसको कहते हैं भक्ति, इसको कृष्णा कॉन्शियसनेस इसको कहते हैं। वो सेंसिटिविटी, हमें संसार में सेंसिटिविटी ढूंढ रहे हैं नहीं, वहाँ पे सेंसिटिविटी आ जाएगी, फिर आपको फील होने लगेगा, तो फिर आप फिर आराम से आप कभी दुखी नहीं होंगे, फिर आप कभी ऐसा भी काम नहीं करोगे जिससे वो भगवान वो रिलेशनशिप में कुछ क्रैक आ जाए। ये होता है हस्बैंड वाइफ में, ये होता है नहीं, तो वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो जाएगा सोल और सुपर सोल में, ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम। महाप्रभु ये तो कह रहे हैं पहले श्लोक में, विद्या वधु यही तो है, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम का रिलेशनशिप वो आ जाता है, फिर आप नहीं कुछ करते सेंसिटिव रिलेशनशिप। पहला श्लोक बहुत डीप है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके सो वी जस्ट फिनिश लास्ट क्वेश्चन, क्या
कहते हैं आपने बताया कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रयास करने पे हम भगवान के पास भगवान हमें देखेंगे।
क्या कह रहे हो, नहीं क्या कह रहे हो इस क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड है तो पूछो।
सही है, अच्छा।
ये पता नहीं, मैंने सुना था वो प्रभुपाद जी को आके किसी ने कहा देखो मेरी वाइफ मर गई, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा जाओ वापस जाओ शादी करो, सेकंड मैरिज करो, तुम इतना हार्ड हार्टेड हो तो तुम क्या भक्ति करोगे।
हो भी सकता है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है क्योंकि बिल्कुल ही हिप्पी टाइप के होते हैं ना, हिप्पी टाइप के लोग, तो एक शादी की फेंक दिया, दूसरी शादी की फेंक दिया, तीसरी शादी, तो वो उस चीज को समझते हैं कि मैं समान हो गया हूँ दुख सुख में। वो उस चीज को समझते हैं। इनफैक्ट फॉरनर्स ये भी कहते हैं कि तुम इंडियंस तो बहुत ही मतलब लो लेवल पे हो, देखो देखो हमारे लड़की भी ऐसे घूमती है, लड़के भी घूमते हैं, निकल में हमें तो कुछ नहीं होता, तुम लोग ऐसे छुई मुई की तरह भागते रहते हो। तो वो कहते हैं तुम तो बिल्कुल समान ही नहीं हो, ठीक है, तुम तो इफेक्ट होते रहते छोटी छोटी चीजों से। तो मगर वो उस हार्ड हार्टेडनेस को उन्होंने ये रियलाइज प्लेटफॉर्म समझ लिया, इसलिए प्रभुपाद ने कहा तुम तो नॉनसेंस हो यार, मतलब भगवान के लिए तो प्रेम नहीं है, या तो भगवान के लिए प्रेम हो वहां पे भी, वहां पे भी सब जगह। प्रभुपाद ने कहा जाके भैया कुछ पहले मनुष्य बन जाओ, अभी तो कुत्ते बिल्ली हो। उनके लिए ठीक है, और हमारे लिए ऐसा नहीं है, हम तो मतलब वैसे तो नहीं है ना, एक कल्चर्ड लोग हैं और हम एक उस लेवल से तो ऊपर ही हैं। फिर तो डिवोटीज के लिए अलग मैसेज है, डिवोटीज के लिए डिफरेंट मैसेज है। डिवोटीज हो सकता है आपको हार्ड हार्टेड लगे, ऐसे डिवोटी हैं नहीं, इन्होंने फीस्टिंग की तो ये कहेगा ये क्या है, मगर ऐसे ये महाप्रभु ने छोड़ा नहीं विष्णु प्रिया को, हार्ड हार्टेड हो गए। कोई कह सकता है यार उन्होंने बूढ़ी माँ को और अपनी नई जवान पत्नी को छोड़ दिया, लो। बल्कि सची माँ यही कह रही थी महाप्रभु को कि तुम इतने निर्दय हृदय के कैसे हो सकते हो, हमें छोड़ के जा रहे हो। महाप्रभु ने कहा कृष्णा पोषण करेंगे, चिंता मत करो। सो ये वो हार्ड हार्टेड अलग है, ये हार्ड हार्टेड अलग है नहीं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी तो ये चीज़ें चलती हैं, मगर वो स्पिरिचुअल हार्ड हार्टेडनेस है। सो हमें पता है फिलोसफिकली कि भाई एक जीव दूसरे जीव का संबंध हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है,
तो
क्यों बनाते रहे हैं। हाँ तो मगर वो कृष्णा के इमोशंस के लिए सेंसिटिव है, ये भी बात है। वो जो आदमी है वो कहीं भी सेंसिटिव नहीं है, ना भगवान के लिए ना वहां भैया अभी सब कुछ। तो यार तू पहले मनुष्य तो बन, पहले एक पत्नी तो रखना सीख, तुझे एक औरत नहीं समझ रही, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो क्या सीखेगा। तो एक डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे इंस्ट्रक्शन चलती है। सो भागवत में भी ऐसे ही है, डिफरेंट लेवल्स पे इंस्ट्रक्शन चल रही है, इसलिए तो गुरु चाहिए होता है। खुद से कोई नहीं समझ सकता क्या, खुद से कोई नहीं समझ सकता क्या करना है। सो उसके लिए गुरु चाहिए होता है कि भाई तुम्हारे लेवल की इंस्ट्रक्शन क्या है ये समझो और फिर आगे चलो। नहीं कई बार गुरु बोलते हैं शादी कर लो, कई बार बोलते हैं नहीं करो, है नहीं होता है, नहीं होता है तो कहेंगे क्या आपने तो उसको बोला, इसको ऐसे शादी करने का बोला, ये क्या चल रहा है, आपको ही नहीं आता कुछ, कन्फ्यूज हो खुद ही कह सकता है। सो बट He'll tell, come on, उस लेवल के लिए वो सही है और इन लेवल के लिए ये इंस्ट्रक्शन सही है, उसके लिए शादी करना ठीक है, इसके लिए शादी ना करना ठीक है। सो इस तरह से चलता है। जो प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के आप कन्फ्यूज हो सकते हो 100%, क्योंकि बहुत प्रभुपाद बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस बहुत सारी प्लेसेस पे कह रहे हैं। नहीं अगर आपने प्रभुपाद की सारी बुक्स पढ़ ली तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, इसलिए सारी बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए कभी भी, है नहीं। Well, I'm just joking, you know. But सारी बुक्स पढ़े बिना भी कोई फिर तो बिल्कुल तो सारी कंफ्यूजन है,
डाउट तो आए एक बार पढ़ने के बाद,
मगर सारी बुक्स पढ़ के
साधु संघ,
हाँ इसलिए इसलिए साधु संघ में सारी बुक्स पढ़ने के बाद भी हो सकता है आपको कुछ क्लियर ना हो, क्योंकि प्रभुपाद कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं, अभी इस्कॉन में यही तो झंझट चल रहा है, कभी प्रभुपाद कह रहे हैं वुमेन गुरु बन सकती है, कभी प्रभुपाद कह रहे हैं नहीं बन सकती, तो बहुत बड़ा इशू चल रहा है। प्रभुपाद ने कई जगह बोला है कि भी औरतें भी लेक्चर दे सकती हैं, वो गुरु बन सकती हैं, कई बार प्रभुपाद ने बोला नहीं बन सकती, सो तो इस्कॉन में दो डिविजन्स ही हो गई हैं, डिवाइड ही हो गया इस्कॉन, मतलब प्रैक्टिकली डिवाइड हो गया, कुछ लोग इस तरफ हैं कुछ लोग इस तरफ हैं, लड़ाई चल रही है, वुमेन गुरु बन सकती नहीं बन सकती है, दोनों के पास प्रभुपाद के लेटर है, क्या करोगे आप, क्या क्या कर सकते हो, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग।
कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान के बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रयास करना रहता है,
करना
है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रयास करने के लिए जो सामर्थ्य है वो व्यक्ति को अपने आप डेवलप करना है, वो भगवान सामर्थ्य
वो साधु संघ से आता है, साधु संघ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रयास आता है, आप जैसा संघ करोगे वैसे बन जाओगे, यानी
जैसे कि जब हम शुरू में आए साधारण लोगों को और हम तो हमें जो कनिष्ठ अधिकारी थे उनका उनका जो एफर्ट था वो बहुत ज्यादा लगता था, उस समय अगर कोई भक्त अगर एक्स्ट्रा एफर्ट करने का प्रयास करता तो भक्त समाज ही कहता देखो क्या लग सका था,
तो हमें क्या करना है उसको
कैसे आइडेंटिफाई होके इसका उसका जो एक्स्ट्रा एफर्ट है वो अवेलेबल है,
ये क्या कैसा क्वेश्चन है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा,
ये वैलिड है कि नहीं उसका, जैसे कोई 64 माला करने लग गया अचानक से,
अच्छा ये कह रहे हो,
लोग तो कहेंगे भाई यार
मेरा एफर्ट तो कोई,
अच्छा लोग तो कहेंगे सही नहीं चल रहा, वेल हमेशा
हमारे अकॉर्डिंगली चल रहा है, देखो कहीं
से हमेशा भक्ति मतलब अथॉरिटी, बिना अथॉरिटी कुछ नहीं होता, अगर आपके सीनियर्स जिन पे आपका जिनको जिन पे आपका फेथ है और आपको उनको फेथ है, अगर वो कह रहे हैं सही है तो ठीक है, अगर वो कह रहे हैं नहीं सही है तो दैट्स ऑल, हमेशा कोई ऊपर तो होना ही चाहिए, देखो खुद से नहीं पता लग सकता, खुद से इम्पॉसिबल है, इसलिए आप अकेले होना बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए जितने सीनियर होते जा रहे हो ना डिवोशन में उतने रिस्क में जाते जा रहे हो, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कोई बोल नहीं सकता, कौन बोलेगा आपको, और अगर आप सबसे सीनियर हो सबसे ज्यादा रिस्क में हो अंटिल अनलेस परमहंस नहीं हो, परमहंस तो ठीक है, तभी प्रभुपाद के डिसाइपल्स गिर गए, कितने प्रभुपाद चले गए वो सारे सन्यासी और सबसे सीनियर बन गए, जीवीसी द्वारा कोई बोलने वाला ही नहीं है, धड़ एक एक करके सबका फॉल डाउन हो गया, सो बहुत बड़ी रिस्क है, जितने सीनियर हो उतना वेरी डिफिकल्ट, आपने सन्यास ले लिया आप और रिस्क में आ गए, कोई बोल ही नहीं सकता, आप डंडा है लगेगा सर पे मारो डंडा देते हैं सब डरते हैं डंडे से, तो ब्रह्मचारी हो तो आधा बेटर हो, डंडा नहीं है भैया सब आप बोल सकते हैं ना आपको लोग, सो इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड हम ऊपर जा रहे हैं मगर रिस्क में भी आ रहे हैं बहुत बड़ी, सो आप जितने नीचे उतना बेटर है, लोग आपके ऊपर है ना बता सकते हैं आपको भी ये प्रॉब्लम है सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दैट्स अ गुड आइडिया, मगर आप इसका मतलब मैं नहीं कह रहा कि एडवांस ना करो, आप ऊपर जा सकते हो मगर हमेशा कुछ लोगों को अपने ऊपर रखो, वरना बहुत प्रॉब्लम है, वरना अच्छे अच्छे लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कितनी फिलॉसफी पढ़ लो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, मतलब मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया था एक पॉइंट पे, मुझे खुद ही समझ नहीं आया कि महाराज ने बताया तो मुझे दिखाई दिया कि अरे ये तो ऐसे आई कुडंट फिगर आउट, वो 100% है, आप कितने इंटेलिजेंट हो जाओ कितने फिलॉसफी कर लो आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि माया माया ऐसा जाल बुनेगी आपको पता ही नहीं लगेगा कि ऐसा हो रहा है आपके साथ, आप खुद ही अपने को कुल्हाड़ी मार रहे होगे आपको पता ही नहीं लगेगा, ये ऐसा कर देगी माया, सो माया बहुत ट्रिकी है ना, नहीं नहीं पता लग सकता हमें, और सारे अच्छे ठीक लॉजिक भी आ जाएंगे कि मैं तो सही कर रहा हूँ मैं तो जगत के कल्याण, भरत महाराज को लॉजिक यही तो आया मैं तो हिरण के कल्याण के लिए कर रहा हूँ, ऐसा कौन सा संत है हार्ट हार्टेड आपका हार्ट हार्टेड मैं तो हार्ट हार्टेड नहीं बनूंगा बेचारा हिरन, कौन सा साधु है जो हार्ट हार्टेड है, ये मेन पॉइंट था भरत का वहां पे, पढ़ लो भागवतम कि मैं तो निर्दय बन जाऊंगा अगर बेचारे हिरन को छोड़ दूंगा, कौन सा संत कभी निर्दय हुआ है कभी निर्दय नहीं हुआ, मैं दयालु हुआ है, मेन क्वालिटी संत की ये है, उन्होंने रख लिया, कंफ्यूज हो गए सिंपल वही वो इसी में कंफ्यूज होगा हार्ट हार्टेडनेस क्या है और रियल दयावान क्या है वो इसमें कंफ्यूज हो गए गरीब उनको पता नहीं लगा एंड ही वॉज इंटेलिजेंट सारे संसार के राजा मतलब यू कैन इमेजिन भक्ति के एक लेवल पहुंच गए परम वैराग्य सब कुछ छोड़ दिया सो हमेशा कुछ लोग रखो अपने साथ में ज़्यादा अच्छा है कुछ लोग सुपीरियर रखो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कुछ जूनियर भी रख सकते हो जिनको जो मुंह फट होते हैं वो भी अच्छे हैं कुछ ऐसे भी होने चाहिए जूनियर जो आपको बोल सकते हैं मुंह फट टाइप के नहीं होते उससे आप सेफ रहोगे
क्या कर दिया
हमेशा वो भी अच्छा है क्या कह रहे हो
इस टाइम कैसे खा रहे हो
सो दैट्स अ बेटर थिंग मगर ऐसा हम करते नहीं हम जनरली अपने ज्यादा फ्लैटरर्स लगते हैं जो हमसे जनरली हम लोग ऐसा करते हैं ऑफकोर्स करोड़ों मुफट हो जाएंगे तो आप परेशानी हो जाओगे वो भी बात है वैसा भी नहीं हो सकता बट कुछ अरेंजमेंट करो अपने ऊपर सीनियर रखो किसी को जिसके लिए जिसके प्रति आप अकाउंटेबल हो वरना तो गए आप वरना गए 100% गए कोई नहीं आ सकता इम्पॉसिबल है ये तरीका है सर कुछ नहीं ओके शीला प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण